ये हैं मिस्टर अविनाश रघुवंशी। अविनाश रघुवंशी द ओनर ऑफ रघुवंशी एम्पायर, और हम इंडिया पहली बार आए हैं, वो भी सिंघानिया अम्पायर के साथ एक डील करने के लिए आए थे। अब आगे, क्योंकि वे लोग काफ़ी समय से हम लोगों के साथ कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ आए थे। अब जैसे ही एंजल ने ये बोला, वैसे ही आहान, ध्रुव, सुमित, साथ साथ अरमान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अरमान अच्छी तरह से रघुवंशी अम्पायर के बारे में जानता था, और कई सालों से अरमान ने देव को और साथ ही साथ अपने ऑफिस के आधे से ज़्यादा स्टाफ को रघुवंशी अम्पायर से कॉन्टैक्ट करने में, उनसे कोई ना कोई डील करने में लगा रखा था। क्योंकि अगर रघुवंशी अम्पायर विदेश का सबसे बड़ा बिजनेस था, तो उन लोगों का विदेश में सबसे बड़ी ठाटपाट थी, और अरमान सिंघानिया उनके साथ मिलकर अपनी कंपनी को और अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहता था और देश विदेश में भी अपनी कंपनी का डंका बजाना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने ये सुना, सब हैरान हो गए थे। तभी ध्रुव बोला, अच्छा, लेकिन हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर लें? हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हों। तभी एंजल ने जल्दी ही अपनी कंपनी का कार्ड निकालकर ध्रुव को दिखा दिया था और कॉन्फिडेंस से बोली, ये मेरी कंपनी का ऑफिशियल कार्ड है, आप चाहें तो पता करवा सकते हैं। अब जैसे ही एंजल ने ये बोला, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जल्दी ही अरमान ने पुलिस वालों को इशारा कर दिया था और अविनाश के हाथों को छोड़ दिया गया था, और अरमान ने आस्था को खुद से अलग किया और आस्था के सामने जाकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अरमान सिंघानिया है, आई एम द ओनर ऑफ सिंघानिया एम्पायर। अब जैसे ही अरमान ने बताया, अविनाश ने भी उसके साथ हेलो किया और फिर एंजल के पास जाकर खड़ा हो गया था और बोला, थैंक यू सो मच एंजल, अगर आज तुम सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलता। पर एंजल बोली, लेकिन सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई, और ये सब लोग आप पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप यहाँ आकर लड़कियों के गले को देख रहे थे? अगर आपको किसी का गला देखने का ही शौक है तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए डीप गले पहनना शुरू कर सकती हूँ। अब जैसे ही एंजल ने ये कहा, अविनाश उसे घूर कर देखने लगा था। बाकी सब भी एंजल की बातें सुनकर मन ही मन हंसने लगे। तब अविनाश ने एक नज़र सबकी ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ कि आप सबने मुझे गलत समझ लिया है, लेकिन मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ प्रोफेशनल के साथ साथ अपने पर्सनल काम से भी आया था। अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला, वैसे ही एंजल के तन बदन में आग लग गई थी और वो सोचने लगी थी कि ज़रूर उसे लड़की की लीड मिल गई होगी। तभी तो उस लड़की को ढूंढने के लिए उसका बॉस मीटिंग के बहाने से यहाँ आया है। तब एंजल बोली, लेकिन सर, आखिरकार आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों उस लड़की, एक लड़की के पीछे इस तरह से पागल हो गए हैं? अब ज़रूरी तो नहीं है ना उस लड़की को ढूंढना। ऐसा भी हो सकता है उस लड़की की शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हों, और वो लड़की अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गई हो, तो क्या ज़रूरी है उस लड़की को इस तरह ढूंढना? जैसे ही एंजल ने ये कहा, सबको सांप सूंघ गया था और सबको यकीन हो गया कि ज़रूर अविनाश किसी को ढूंढ रहा था और उन्होंने ही उसे गलत समझ लिया था। अब अविनाश एंजल की गलतफहमी दूर करता हुआ उसे क्लियरली बोलने वाला था कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, लेकिन उससे पहले ही रश्मि तपाक से बोल पड़ी, आई एम सो सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि असल में आप अपनी किसी खास को ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और आहान भी अब सॉरी करने लगा था क्योंकि उसने अविनाश पर हाथ उठा दिया था। वहीं रौनक बार बार रह रहकर अविनाश की ओर देख रही थी। अविनाश ने उसे गिरते हुए संभाला था और उसे उसका अंदाज बहुत पसंद आया था। वहीं आहान भी देख रहा था कि रौनक बार बार अविनाश को देख रही है, क्योंकि अरमान ने अब अविनाश को अपने साथ डिनर करने के लिए रोक लिया था और एंजल भी उनमें शामिल हो गई थी। सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लगे। रौनक बार बार अविनाश को घूर रही थी, उस टॉपिक को उन्होंने बंद कर दिया था। और तभी आहान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर क्यों रौनक अविनाश को घूर रही है, क्योंकि अविनाश दिखने में बेहद हॉट और हैंडसम और डैशिंग था, लेकिन अविनाश को थोड़ा सा अलग हटकर बनाता था। अब जैसे ही एंजल ने अविनाश से कुछ सवाल किया, तब उसे पता चल चुका था कि उसका बॉस शायद हमेशा की तरह चिढ़ जाएगा और उसे कोई जवाब नहीं देगा, इसीलिए एंजल अब खून का घुट पीकर रह गई थी और वो सबके साथ डिनर करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही राजवीर जिंदल बेहद परेशान हो उठा था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मैरिज एनिवर्सरी करीब आ रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी बीवी को उसकी पसंद का खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट करना चाहता था, जो कि अब आस्था के पास था, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्टेडली हर जगह, हर शहर में आस्था को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आस्था का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वो भी आस्था की तलाश में अविनाश की तरह ही सुमित के ही होटल में आ पहुंचा था, आस्था के बारे में कोई ना कोई जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होकर इस वक्त ड्रिंक बार में बैठा हुआ था और लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करता जा रहा था। और उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ से उठकर वापस से अपने घर चला जाए, और जब उसे वेटर ने ज़्यादा ड्रिंक करने से रोका तो उसने वेटर के सर पर ही बोतल फोड़ दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा हो गया था। और ये खबर मैनेजर के साथ, मैनेजर ने सुमित तक पहुँचा दी गई थी। तब सुमित, जो कि उस वक्त खाना खा रहा था, उसने उन सब की ओर देखकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ।
अरमान ने सुमित से जानने की भी कोशिश की थी कि क्या काम आ गया है, लेकिन उस वक्त सब लड़कियों के साथ में होने की वजह से सुमित ने किसी को कुछ नहीं बताया और पोलाइटली बोला, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सुमित अब जल्दी ही ड्रिंक वाले एरिया यानी बाहर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर राजवीर जिंदल ने एक वेटर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसने देखा कि होटल की सिक्योरिटी वालों ने राजवीर जिंदल को पकड़े रखा हुआ था और वो उसे समझा बुझा रहे थे, क्योंकि राजवीर के सर पर जुनून सवार हो गया था कि उस वेटर की हिम्मत कैसे हुई उसे ड्रिंक करने से रोकने की। इसीलिए वो बेरहमी से मार मार कर वेटर की जान ले लेना चाहता था, लेकिन वक्त रहते अब सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया था तो उसे और भी गुस्सा आ रहा था, तो वो अब गंदी गंदी वहां पर गालियां देने लगा था। तभी सुमित ने आकर राजवीर को समझाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि राजवीर इस वक्त एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल की थी, लेकिन उसका आकर्षण, उसका व्यक्तित्व ऐसा था जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर जब ये जवान होगा तो कितना ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता होगा। वो तभी सुमित ने अपनी सिक्योरिटी को इशारा किया और सिक्योरिटी ने एक ड्रिंक में एक गोली मिलाकर जबरदस्ती राजवीर के मुंह में डाल दी थी और कुछ ही देर में वो डॉक्टर राजवीर बेहोश हो गया था। सुमित अपने होटल में इस तरह की कुछ इमरजेंसी गोलियां रखा करता था, जिससे अगर कोई ज्यादा शराब पीकर किसी तरह का कोई हंगामा करे तो उसे कंट्रोल कर सके। वो गोलियां उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया करती थी। इसीलिए सुमित ने अब, क्योंकि वो तो राजवीर की उम्र 50 से 55 साल की थी, तो इसीलिए वो इस तरह से उठाकर उसे सड़क पर भी नहीं फेंक सकते थे, इसीलिए सुमित ने राजवीर को अपने ही होटल के एक कमरे में भिजवा दिया था
और इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि जब तक उनका नशा नहीं उतर जाता है तब तक उन्हें उस कमरे में रहने दे। और अपने वेटर को उसने मरहम पट्टी के लिए भेज दिया था। वहां का छोटा सा काम करने के बाद सुमित अब जैसे ही वापस जाने लगा तो वो तुरंत राधिका से टकरा गया था। राधिका जब खाना खा रही थी तो सालन से भरी चम्मच उसके कपड़ों पर गिर गई थी, इसीलिए वो बस क्लीन करने के लिए उठकर वापस से सबके साथ खाना खाने के लिए जा रही थी, लेकिन इस वक्त सुमित टकरा गया था। सुमित ने अपने हाथों को राधिका को अच्छे से फोल्ड कर लिया था। राधिका ने बिना किसी इमोशन के सुमित की ओर देखा और ना हाय हेलो कुछ भी बोले, सीधा जाकर आस्था के ठीक बराबर में बैठ गई थी। वहीं राधिका का इस तरह उसे इग्नोर करना सुमित को कुछ खास पसंद नहीं आया था और वो मन ही मन झुंझलाते हुए बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याओ, देख लूंगा तुम्हें। तब तक ऐसा बोलकर जल्दी ही सुमित जल्दी ही वापस आ गया। अब अविनाश वहां से जाने लगा था और जाने से पहले वो हल्का सा मुस्कुराकर आस्था की ओर देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। क्योंकि इस बीच आस्था ही थी जो बार बार सबको रोक रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलती की है, तो इसीलिए अविनाश ने एक छोटा सा थैंक यू आस्था को बोल दिया था और आस्था ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उसे बाय बोला था और जल्दी ही अब सब वहां से चले गए थे। एंजल और अविनाश एक साथ बाहर आए थे। तब एंजल अलग होते हुए बोली, अच्छा सर मैं अब चलती हूँ, क्योंकि वो अपने डिम्पल के घर से सीधा यहाँ अपना फ़ोन वगैरह लेने के लिए आई थी। अब यहाँ अविनाश मिल गया तो उसे अविनाश से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अविनाश ने एंजल को रोका फिर और ऑर्डर देते हुए बोला, मिस एंजल आप एक काम कीजिए, कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपके बिना मेरा काम चल नहीं पाएगा। अगर आज आप नहीं आती तो न जाने क्या हो जाता, इसलिए अब आपका मेरे साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने शहर तो घूम फिर लिया ही होगा ना। अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला, एंजल खुशी से उछलने लगी थी। वो तो खुद वापस से काम पर आना चाहती थी। वो अविनाश के इतना कहने पर वो और खुश हो गई थी। वो खुशी से अविनाश को गले से लगाना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने उसे तुरंत ही पीछे मुड़कर वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। और एंजल अब डिम्पल के घर की ओर जाकर उसे बताना चाहती थी कि वो सिर्फ आज रात यहाँ रुकेगी, इसीलिए वो सीधा डिम्पल के पास चली गई थी। अपना सामान पैक करके वो डिम्पल के कमरे में आई। उसने देखा डिम्पल ने गुस्से से पूरा कमरा कबाड़ा बना रखा था। एंजल उसे समझाने लगी, डोंट वरी डिम्पल, इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट्स लाइफ में हो जाते हैं, उन्हें दिल पर नहीं लगाते। और अचानक डिम्पल एंजल के हाथ में बैग को गौर से देखते हुए नाखुश होकर बोली, आप कहाँ जा रही हैं एंजल दीदी। तब एंजल बोलती है, वो एक्चुअली मैंने बोला था ना मुझे अब अपने काम पर वापस लौटना होगा, वैसे मैं ऑफिशियली यहाँ आई हूँ, घूमने फिरने की वजह से नहीं आई हूँ, बॉस ने कुछ दिन की छुट्टी दे दी थी, वही बहुत है मेरे लिए। अब एंजल की बात सुनकर डिम्पल को मन ही मन रिग्रेट हो रहा था। उसे तो ये लग रहा था कि जरूर होटल में जो कुछ हुआ शायद इसीलिए एंजल को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए बहाना बनाकर अब यहाँ से जा रही है, लेकिन डिम्पल उसे रोक नहीं पाती। एंजल वहाँ से अब चली गई थी। अब तो डिम्पल झल्ला कर रह गई थी और बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दो कोड़े की अनाथ लड़की। वहीं दूसरी ओर सभी अब अपने घर पहुँच चुके थे और सबने अच्छे से डिनर किया था। घर पहुंचकर ध्रुव ने आहान के चेहरे को नोटिस किया। आहान का चेहरा इस वक्त गुस्से में लाल हो गया था, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और तभी ध्रुव मौका देखकर आहान से शरारती अंदाज में बोला, यार मुझे लगता है जो आज वो फॉरेनर अविनाश रघुवंशी था कितना हैंडसम था ना दिखने में, मुझे लगता है कि शायद वो रौनक को पसंद करने लगा है।
और हमें कुछ ना कुछ करके रौनक और अविनाश की सेटिंग करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। अब जैसे ही ध्रुव ने जानबूझकर आहान को तपाने के लिए कहा, तब आहान के तो माथे पर बल पड़ गए थे और उसने तुरंत ध्रुव का गिरेबान पकड़ लिया था और ध्रुव हैरानी से आहान की ओर देखने लगा था। तब ध्रुव बेचारा समूह बनाकर बोला, यार तुझे क्या हो गया और तू मेरा गिरेबान क्यों पकड़ रहा है, मैंने क्या किया? अब ध्रुव की बात सुनने के बाद आहान ने उसे छोड़ दिया और वहां से निकलकर सीधा बाथरूम में चला गया था। वहीं ध्रुव उसके जाने के बाद जोरों से हंसने लगा था और खुश होकर बोला, साफ साफ कहना आशिक प्यार करता है, फिर हिम्मत क्यों नहीं है तुझ में बोलने की? ये बोलकर ध्रुव आहान का मजाक उड़ाने लगा था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अगली सुबह हो गई थी और हमेशा की तरह सबने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और अरमान ने आस्था को कॉलेज छोड़ दिया था। उधर से रौनक भी उसे कॉलेज के दरवाजे पर ही मिल गई थी। दोनों एक साथ कॉलेज में गई थी और अभी उन्हें क्लास अटेंड हुए कुछ 20 से 25 मिनट हुए थे। तभी एक प्यून ने वहां आकर बताया कि प्रिंसिपल साहब उन दोनों को बुला रहे हैं। अब आस्था और रौनक दोनों ही हैरान हो गईं। लेकिन जैसे ही वहां गईं, तो प्रिंसिपल साहब खुशी के साथ उन दोनों की ओर देखकर बोले,